हरे कृष्णा। तो आज हम चौथे सत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे भौतिक प्रकृति क्या है, यानी ये भौतिक संसार किन चीजों का बना है, जीव जो इस समय इस भौतिक संसार में हम हैं, हमारा और इस भौतिक प्रकृति का संबंध कैसे है, कब स्थापित हुआ, क्यों हुआ, यानी क्यों हमें इस भौतिक जगत में आना पड़ा, और कर्म क्या है, पुनर्जन्म या पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहने का कारण क्या है, और उस कर्म बंधन से निकलने का उपाय क्या है, इन विषयों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। अभी तक हमने देखा पिछली कल की कक्षा में, कल के सत्र में, कि जीव शरीर से अलग है और भगवान का अंश है। और वो सनातन रूप से भगवान का अंश रहता है। मुक्त अवस्था में भी भगवान के अंश रूप में, भगवान के सेवक के रूप में, भगवान की नित्य सेवा में वो संलग्न रहता है। आत्मा और परमात्मा के विषय में हमने देखा कि इस शरीर के अंदर एक आत्मा है और एक परमात्मा है। परमात्मा भगवान के स्वांश है और आत्मा भगवान के विभिन्न अंश है। फिर हमने देखा परम सत्य को समझने के तीन स्तर, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। जो ब्रह्म ज्योति है वो भगवान के शरीर से निकलने वाला प्रकाश है, जो आध्यात्मिक जगत में व्याप्त है, जिसमें अनेक अनेक आध्यात्मिक ग्रह जिसमें रहते हैं। जैसे यहाँ सूरज की रोशनी में अलग अलग ग्रह हैं आध्यात्मिक जगत में, उसी प्रकार से ब्रह्म ज्योति में अलग अलग ग्रह तैर रहे हैं। परमात्मा भगवान के वो अंश हैं जो हर जीव के इस भौतिक जगत में, हर जीव के हृदय में, हर शरीर में, हृदय में आत्मा के साथ वास करते हैं और हर कण कण में भी हैं। और इन दोनों के उद्गम स्थान साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। भगवान हमने देखा परिभाषा के अनुसार जो छह ऐश्वर्यों से पूर्ण है, षड ऐश्वर्यों से पूर्ण है, उसकी परिभाषा में हमने देखा श्री कृष्ण वास्तव में षड ऐश्वर्यों से पूर्ण है। और कोई भी अवतार जो है, जो अवतरित होते हैं, उनका व्याख्यान शास्त्रों में होता है, उसके आधार पर हम केवल स्वीकार कर सकते हैं कि कोई अवतार है, अन्यथा नहीं। तो इस जानकारी के साथ, आत्मा और परमात्मा के इस जानकारी के साथ, अभी हम आगे बढ़ते हैं कि ये भौतिक जगत क्या है। तो भगवान शक्तिमान है और उनकी अनेक शक्तियां हैं, सर्वशक्तिमान है और उनकी अनेक शक्तियां हैं, जो मुख्य रूप से तीन प्रकार की बताई गई है। अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। इनमें से जो अंतरंग और तटस्थ है वो गुण की दृष्टि से परा प्रकृति है, और जो बहिरंगा शक्ति है उसे अपरा कहा गया है। तो भगवान की दो प्रकार की शक्तियां, गुण की दृष्टि से दो प्रकार की शक्तियां होती हैं, एक परा और एक अपरा। परा के अंदर दो प्रकार की शक्तियां आती हैं, अंतरंग और तटस्थ, और अपरा के अंतर्गत आती है बहिरंगा शक्ति। तो ये जो भौतिक जगत हम देख रहे हैं, जो भूमिर अपनल वायु खम, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पंचभूत का और तीन सूक्ष्म तत्व मन बुद्धि अहंकार का, कुल मिलाकर के जो आठ तत्व हैं, इन आठ तत्वों का बना जो ये भौतिक संसार है, ये अपरा शक्ति है। अपरा मतलब निम्न स्तर की। क्यों निम्न स्तर की बताई गई है? क्योंकि ये जो भगवान की शक्ति है वो अचेतन है, वो चेतना से ही है, उसमें चेतना नहीं है, जड़ है। तो पृथ्वी, जल, आकाश, वायु से बना ये जो शरीर है, ये जड़ है। जब इसके अंदर आत्मा होती है तब ये जीवित प्रतीत होता है, और जब आत्मा निकल जाती है तो दोबारा से जड़ लगने लगता है, लेकिन वास्तव में हमेशा से जड़ ही रहता है। तो ये जो भौतिक संसार, भौतिक सृष्टि जो हम देख रहे हैं, ये अपरा शक्ति है, और जो जीव हैं वो पराशक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं भगवद गीता में कि आठ तत्वों की बनी मेरी अपरा शक्ति है, और अपरेण तस्तु अन्यम, इनसे परे एक और जो मेरी शक्ति है, या ये दम जीवभूता, जो जीवभूत की बनाई हुई है, जो जीवभूत से बनी हुई, यानी जीवों की बनी हुई है, आत्माओं की बनी हुई है, या ये दम धार्यते जगत, जो इन भौतिक जगत का धारण करती है, तो ये है वो आत्मा या तटस्थ शक्ति। तो एक भौतिक जगत है और एक आध्यात्मिक जगत है। केवल जो ये ब्रह्मांड हम देख रहे हैं, ये तो भौतिक जगत का केवल एक थोड़ा सा अंश है, ऐसे ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड हैं। ब्रह्म अंड मतलब अंडे की तरह से एक एक आकार है, और उसके अंदर 14 भुवन हैं, ब्रह्मलोक से लेकर के पाताल लोक तक, हर एक ब्रह्मांड के अंदर, और हमारी पृथ्वी बीच में है। तो ऐसा एक ब्रह्मांड हुआ, उसमें एक सूरज होता है, ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड, और वो सब मिला करके भौतिक प्रकृति, जड़, अपरा, इन आठ तत्वों की बनी ये भौतिक प्रकृति होती है। तो एक भौतिक जगत है और एक आध्यात्मिक जगत है, जो पराशक्ति से बना होता है। भौतिक जगत अपराशक्ति से बना होता है, जड़ चीजों से बना है, और आध्यात्मिक जगत परा, दिव्य, चिन्मय, चिन्मय धाम है, वहां हर चीज चेतन है, हर चीज, वहां पर जो धरती, वायु, जल, सब चेतन है, वहां अचेतन नहीं, हर चीज चेतन है वहां। तो वो है पराशक्ति का आध्यात्मिक जगत, जहां पर वैकुंठ लोक जिसे हम कहते हैं, वैकुंठ जगत, जहां पर अनेक अनेक ग्रह हैं, सब दिव्य आध्यात्मिक ग्रह हैं, और उनमें सर्वश्रेष्ठ स्तर पे है गोलोक वृंदावन धाम। तो अलग अलग वैकुंठ में भगवान अलग अलग रूप में विराजमान हैं, अलग अलग विष्णु रूपों में, चतुर्भुज, शंख, गदा, पद्म, और गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण हैं, फिर मथुरा धाम है, फिर अयोध्या धाम है। जो इस भौतिक जगत में सब धाम है, ये उस आध्यात्मिक जगत के धाम का एक एक सैंपल जैसे है। नित्य रूप से सभी धाम आध्यात्मिक जगत में विराजमान है, और वो जो आध्यात्मिक जगत है वहां पराशक्ति है, सब चिन्मय है, और वहां पर आत्माएं भी हैं। भौतिक जगत में भी आत्माएं हैं और आध्यात्मिक जगत में भी हैं। जो आत्माएं भौतिक जगत में हैं उन्हें बद्ध कहा जाता है, बद्ध आत्माएं, बंधी हुई, क्योंकि वो हालांकि परा हैं पर अपरा के प्रभाव में आई हुई हैं, जड़ के प्रभाव में आई हुई हैं, शरीर, एक भौतिक शरीर धारण किए हुए हैं। और आध्यात्मिक जगत में जो आत्माएं हैं उन्हें मुक्त आत्माएं कहा जाता है, यानी कि वो जड़ प्रकृति के प्रभाव में नहीं है, बल्कि अपनी स्वाभाविक पराशक्ति के प्रभाव में चिन्मय रूप में है, चिन्मय स्वरूप में है। तो इसलिए उनको तटस्थ कहा है जीवों को। तो अंतरंग शक्ति जो आध्यात्मिक जगत का संचालन करती है, बहिरंगा शक्ति जो भौतिक जगत का संचालन करती है, और जीव तटस्थ बीच में है। तो जैसे तटस्थ मतलब या तो वो अंतरंग शक्ति के प्रभाव में रह सकते हैं आध्यात्मिक जगत में, या तो भौतिक जगत में रह सकते हैं बहिरंग शक्ति के प्रभाव में, इसीलिए उनको तटस्थ कहा गया है। तो इस प्रकार से शक्तिमान सर्वशक्तिमान भगवान की ये तीन शक्तियां हुई, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति और तटस्थ शक्ति। बहिरंग शक्ति भौतिक जगत जड़, अंतरंग शक्ति आध्यात्मिक जगत में जो संचालन होता है, और तटस्थ जो जीव हैं जो मुक्त अवस्था में अंतरंग शक्ति में रहते हैं और बद्ध अवस्था में बहिरंग शक्ति में रहते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि ये आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में जीव क्यों आता है, वैकुंठ जगत से इस भौतिक जगत में जीव क्यों आता है और कब आता है, कैसे आता है। तो कब आता है इसका एग्जैक्ट कोई भी समय पता नहीं लगाया जा सकता, कब आता है अनगिनत समय से। क्यों आता है, कृष्ण बहिर्मुख कहना जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। बताया गया है जब जीव अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग करके खुद भोक्ता बनना चाहता है, खुद भोग करना चाहता है, भगवान की सेवा से विमुख हो जाता है, भगवान की सेवा नहीं करना चाहता है, तब वो माया के प्रभाव में बहिरंग शक्ति के प्रभाव में आ जाता है, अंतरंग से बहिरंग शक्ति के प्रभाव में आता है। कब, जब जीव अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग कर भोग करने की वांछा करता है। तो हमने कल देखा हर जीव भगवान का अंश है, ममैव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन। अंश होने के कारण हम में वो सभी गुण हैं जो भगवान में हैं, लेकिन क्योंकि हम अंश हैं इसलिए बहुत थोड़ी मात्रा में हैं, हम अणु हैं। तो भगवान का एक गुण है स्वराट, स्वतंत्र इच्छा शक्ति वाले, और क्योंकि हम भगवान के अंश हैं इसलिए हमारे अंदर भी वो गुण है कि हमारी भी एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, लेकिन हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति स्वराट नहीं है, हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, थोड़ी मात्रा में स्वतंत्र है, इच्छा करने की शक्ति, इच्छा करने की स्वतंत्रता है, पर उसको क्रियान्वित करने के लिए हम निर्भर हैं भगवान पर। तो हर जीव का भगवान के साथ एक नित्य संबंध है, हम सबका भगवान के साथ एक नित्य संबंध है। क्या संबंध है, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। हम सभी वास्तव में भगवान के नित्य दास हैं। अपनी इस स्वाभाविक स्थिति में रहते हुए, भगवान की सेवा करते हुए हम सत चित आनंद अनुभव करते हैं, यानी नित्यता, सत मतलब नित्य, चित मतलब पूर्ण ज्ञानवान, और आनंद मतलब पूर्ण आनंद। ये हमारी स्वाभाविक स्थिति है कि भगवान की प्रेममयी भक्ति सेवा करते हुए हर जीव सच्चिदानंद स्थिति का अनुभव करता है, लेकिन हर जीव के पास वो स्वतंत्र इच्छा शक्ति रहती है, क्योंकि प्रेम के लिए, भगवान को प्रेम करने के लिए आवश्यकता है स्वतंत्रता। हम देखते हैं भौतिक जगत में भी कोई दो व्यक्ति प्रेम करते हैं तो स्वतंत्रता की जरूरत होती है, जबरदस्ती किसी से प्रेम नहीं किया करवाया जा सकता, बंदूक की नोक पर रखकर किसी को प्रेम नहीं कराया जा सकता, डंडा मार करके किसी को प्रेम नहीं कराया जा सकता। प्रेम का मतलब है स्वतंत्रता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होगी तभी प्रेम हो सकता है। तो उसी प्रकार से जो जीव के पास वो छोटी स्वतंत्रता है, भगवान कभी उसका हनन नहीं करते हैं, भगवान कभी उसे खत्म नहीं करते हैं, जबरदस्ती नहीं करते हैं कभी जीव के साथ, नहीं तो प्रेम कैसे करेगा जीव। इसलिए वो जो स्वतंत्र इच्छा शक्ति है वो जीव उसके सदुपयोग भी कर सकता है और दुरुपयोग भी कर सकता है। जब जीव भगवान की सेवा करता है तो वो अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का सदुपयोग कर रहा है, क्योंकि वो उसके स्वरूप के अनुसार है। लेकिन जो अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का वो दुरुपयोग करता है, यानी वो ये इच्छा करता है कि मैं भगवान की सेवा नहीं करूं, मैं स्वयं भोग करूं, मैं स्वयं भोक्ता बन जाऊं, जो स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक है, जैसे ही वो ये इच्छा करता है तुरंत वो भगवान की बहिरंग शक्ति माया शक्ति के प्रभाव में आ जाता है। अभी तक अंतरंग शक्ति के प्रभाव में था, पर जैसे वो भोग वांछा करने की इच्छा करता है, कृष्णा भूलिया भगवान को भूल करके भोग करने की इच्छा करता है, तुरंत माया के द्वारा झपट लिया जाता है, तुरंत माया के प्रभाव में आ जाता है। तो इस प्रकार से हम इस भौतिक जगत में अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग करके आते हैं, माया के प्रभाव में आ जाते हैं। जैसे ही हम माया के प्रभाव में आते हैं, यानी भोग करने की इच्छा से, तो माया शक्ति के द्वारा, बहिरंग शक्ति के द्वारा, जो दुर्गा जी हैं भगवान की, वो बहिरंग शक्ति हैं, उनके द्वारा हर जीव को, हर आत्मा को एक भौतिक शरीर दिया जाता है इस भौतिक जगत में भोग करने के लिए, जो उसकी इच्छा है। जैसे आपने देखा होगा जो गोताखोर होते हैं समुद्र में, गोता लगाते हैं अंदर से कुछ लेने के आने के लिए, हीरे मोती या तो किसी और, बहुत समय के लिए रहना चाहते हैं पानी के अंदर, तो गोताखोर को एक पोशाक पहननी पड़ती है, विशेष प्रकार की एक पोशाक पहननी पड़ती है, क्योंकि उसका शरीर ऐसा नहीं है कि वो पानी के अंदर रह सके। इसलिए पानी के अंदर जब उसको जाने की इच्छा होती है तो उसको एक विशेष पोशाक पहननी पड़ती है। उसी प्रकार से जब चिन्मय आत्मा भौतिक जगत में भोग करना चाहती है तो भौतिक प्रकृति के द्वारा उसे एक पोशाक दी जाती है, ये शरीर दिया जाता है जड़ पदार्थों का बना हुआ, जिससे कि वो इस भौतिक जगत का भोग कर सके। उसे भौतिक जड़ इंद्रियां प्रदान की जाती हैं, ज्ञान इंद्रियां, आंख कान नाक ये, और फिर कर्म इंद्रियां, हाथ पैर इत्यादि। तो इस प्रकार से आत्मा को एक एक शरीर मिलता है। सबसे पहले मनुष्य के रूप में जब हम वैकुंठ से आते हैं, मनुष्य का रूप मिलता है, और उसके बाद फिर आगे कर्म के सिद्धांत से अलग अलग योनियों में हम लोग जाते हैं, 84 लाख योनियों में। तो यहां से प्रारंभ होती है भौतिक जगत में हमारी यात्रा। चौरासी लाख प्रकार के अलग अलग शरीर हैं जो हमें इस भौतिक जगत में मिलते हैं, जिसमें बताया गया है 9 लाख प्रकार के शरीर तो वो हैं जो पानी के अंदर रहने वाले प्राणियों को के लिए हैं। उस प्रकार से 20 लाख प्रकार के कुछ मच्छर इत्यादि के शरीर हैं, फिर पक्षियों के शरीर हैं, जानवरों के शरीर हैं, और 4 लाख प्रकार के मनुष्यों के शरीर हैं, 4 लाख प्रकार के चेतना के स्तर पे मनुष्यों के शरीर हैं। तो इस प्रकार से हम भ्रमण कर रहे हैं, हम जो जीव हैं आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत में आकर के इन 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहे हैं, कभी मनुष्य, कभी पक्षी, कभी जानवर, कभी मच्छर, कभी मछली, कभी पेड़ पौधे, ऐसे कभी ब्रह्मा इंद्र, ऐसे करके हम इन 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? सुखी रहने के इच्छा से, कि भौतिक जगत का भोग करके हम सुखी हो जाएंगे। इस गलत इच्छा को पूर्ति करने के प्रयास से इस भौतिक जगत में हम आए हैं और प्रकृति के द्वारा हमें अलग अलग शरीर दिया जा रहा है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। जैसे आप किसी कपड़े की दुकान पे जाएं, अपनी इच्छा के अनुसार और अपनी जेब में कितने पैसे हैं उसके अनुसार आप जाते हैं दुकान पे और कपड़ा चुनते हैं कि आपको कैसा कपड़ा चाहिए और कितने पैसे आपके पास हैं। अलग अलग प्रकार के हैं, कोट है, शर्ट है, अलग अलग प्रकार के वस्त्र उपलब्ध हैं दुकान में। तो आपकी क्षमता कितनी है खरीदने की और आपकी इच्छा क्या है उसके आधार पर आप एक पोशाक ले लेते हैं। उसी प्रकार से ये जो हम भ्रमण करते हैं कैसे करते हैं कि हमारी कौन सी इच्छा है और हमने कैसे कर्म किए हैं इसके आधार पर हमको एक एक शरीर मिलता जाता है। तो ये जो शरीर मिल रहा है ये प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है क्योंकि प्रकृति के वो आठ तत्व हैं। लेकिन ये सब जो कार्य करा रहे हैं क्योंकि प्रकृति स्वयं नहीं कर सकती है, प्रकृति तो जड़ है, वो स्वयं नहीं कर सकती है, तो कराता कौन है, किसकी देखरेख में ये सब काम हो रहा है, किसकी देखरेख में जीव को शरीर प्रदान किए जा रहे हैं, परमात्मा की देखरेख में। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानां यंत्र रूढ़ानि मायया। हम सब जीव एक यंत्र में विराजमान है, एक मशीन के ऊपर बैठे हैं, ये शरीर एक मशीन की तरह से है जिसके ऊपर हम बैठे हैं और भ्रमण कर रहे हैं, 84 लाख योनियों में अलग अलग भ्रमण कर रहे हैं। और ये भ्रमण कौन करा रहा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर जो परमात्मा के रूप में हम सबके हृदय में विराजमान है वो ये भ्रमण करा रहे हैं हमारी इच्छाओं के अनुसार, हमारी इच्छाओं और हमारे कर्मों के अनुसार हमें भ्रमण करा रहे हैं। तो कठोपनिषद में इसको उपमा से समझाया है, जैसे एक रथ होता है, रथ में घोड़े होते हैं, घोड़ों को संचालित करने वाली एक लगाम होती है, वो घोड़ों को चलाने वाला एक सारथी होता है, उस घोड़े पर विराजमान एक सवार होता है। उसी प्रकार से ये पूरा शरीर की उपमा दी है एक उस रथ से, जो ये हमारी इंद्रियां हैं वो ये घोड़े की तरह से हैं, जो ये लगाम है जो घोड़ों को संचालित करने के लिए काम में आती है वो ये मन है, जो सारथी है वो बुद्धि है जो मन के द्वारा इंद्रियों को संचालित करती है। और इस घोड़े इस रथ पर सवार, सवार कौन है, पैसेंजर कौन है, रथ किसके लिए है, रथ पर सवार कौन है, सवारी का है कौन सी है, आत्मा। तो इस प्रकार से हम सवार हैं एक रथ पर जो इस शरीर से बना है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर है कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, आंख नाक, ये जो हाथ पैर देख रहे हैं, और सूक्ष्म शरीर जो मन बुद्धि अहंकार का बना है, इस पर हम हैं सवार आत्मा और भ्रमण कर रहे हैं, और किसकी देखरेख में, परमात्मा की देखरेख में। तो ये जो भौतिक प्रकृति है जो हमें अलग अलग शरीर प्रदान करती है, तीन गुणों के द्वारा ये सब संचालित करती है, आत्मा को कहां किस किस योनि में जाना है वो संचालित करती है तीन गुणों के द्वारा, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जैसे कठपुतली का डांस होता है तो कठपुतली नचाने वाला रस्सियों से कठपुतली नचाता है, उसी प्रकार से जो माया शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है, दुर्गा जी हैं, वो ये तीनों गुणों से जीवों को इस भौतिक जगत में नचा रही हैं। यानी कि हर जीव यहां इन तीनों गुणों से बंधा है, गुण मतलब रस्सी भी होता है, जैसे रस्सी से कोई व्यक्ति को बांध दिया जाए, ऐसे ही ये तीनों गुण हर व्यक्ति को बांधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं। हम सब उसके प्रभाव में कार्य कर रहे हैं। तीनों गुणों के अलग अलग मिश्रण सबके पास अलग अलग हैं। जैसे किसी शरीर में सत्वगुण की अधिकता है, किसी में रजोगुण की अधिकता है, किसी में तमोगुण की अधिकता है, लेकिन है सब तीनों के मिश्रण से ही। तीनों के मिश्रण से ही 84 लाख प्रकार के शरीर बने हैं। और हम आत्मा विवश हो जाते हैं उस प्रकार के बने गुणों से काम करने के लिए। जैसे अगर आप ट्रैक्टर में जा रहे हैं तो एक स्पीड है 40, उससे ऊपर नहीं जा सकते। और आप मारुति कार में बैठे हैं तो आप 100 किलोमीटर की स्पीड पे भी जा सकते हैं। तो जैसी कार है आप उससे सीमित हैं, उसके अनुसार ही आप चल सकते हैं, आप उससे बन जाते हैं। तो उसी प्रकार से जैसा हमें शरीर मिलता है हम उससे बन जाते हैं। जब जीव आत्मा जानवर के शरीर में रहता है, कुत्ते के शरीर में रहता है, तो वो कुत्ते जैसा व्यवहार करने के लिए विवश हो जाता है। फिर वो भौं भौं करता है, फिर वो संगीत नहीं गा सकता, वो भौं भौं करेगा। उसका वो उस प्रकार का शरीर मिला है, विवश है। जो सुअर है वो सुअर के प्रकार से कार्य करने के लिए विवश है। उसको मल में आनंद आएगा, गटर में रहने में आनंद आएगा। जो पक्षी है उसको उस प्रकार की अपनी क्रियाओं से बंधा हुआ है। ऐसे हर शरीर जो हमें मिलता है हम उससे बंध जाते हैं, जीव उससे बंध जाता है। उसी प्रकार से मनुष्य भी अलग अलग 4 लाख प्रकार के अलग अलग चेतनाओं में रह सकते हैं, तमोगुण रजोगुण सतोगुण के मिश्रण से। जैसे हम देखें, जिस व्यक्ति में सतोगुण की अधिकता होती है उसके गुण कैसे होते हैं, उसमें ज्ञान की अधिकता होती है, अधिक ज्ञानवान होता है, इंद्रियों पर संयम उसका होता है। तो जो वैज्ञानिक हैं, दार्शनिक हैं, ये लोग इस सतोगुण में आते हैं। वो लोग शास्त्र के अनुसार कार्य करते हैं, पाप कर्म नहीं करते हैं, इसलिए भौतिक आनंद अनुभव करते हैं, सुख शांति में जीवन व्यतीत करते हैं, नशा इत्यादि नहीं करते हैं, उनकी भौतिक कामनाएं भी बहुत सारी नहीं होती हैं, संतुष्ट रहते हैं। ऐसे व्यक्ति हम कह सकते हैं उनके अंदर सतोगुण की अधिकता है। फिर हम कुछ लोगों को देखते हैं, मनुष्यों की बात हो रही है, जिनके अंदर बहुत सारी कामनाएं होती हैं, जिनकी बड़ी बड़ी प्लानिंग होती है, बहुत बड़ा आदमी बनना है, बहुत बहुत इच्छाएं होती हैं। वो लोग हमेशा कुछ ना कुछ क्रिया में व्यस्त रहते हैं, सुबह से लेकर रात तक ढंग से सोते भी नहीं हैं। विशेष रूप से स्त्री पुरुष आकर्षण अधिक से अधिक उन लोगों में पाया जाता है जो रजोगुण से प्रेरित होते हैं। ऐसे लोग रजो मीन्स हमेशा कुछ ना कुछ क्रिया करते रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, और बहुत बड़ी बड़ी अपनी कामनाएं होती हैं, पर संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, ये रजोगुण में आते हैं। और तमोगुण के लोग वो हैं आलस्य, हमेशा सोते रहना, दिन में 10-10, 12-12 घंटा सोना उनको आनंद आता है। इन लोगों को आनंद आता है सोने में, छुट्टी मिली सोने के लिए। तो हम देखते हैं ऐसे लोग होते हैं, सोना है और शराब पीना, नशा करना, इसमें उनको आनंद आता है। तो यानी वो तमोगुण से प्रेरित हैं, तमोगुण से बंधे हुए हैं। तो इस तरह से इस भौतिक जगत में आत्मा एक शरीर प्राप्त करता है और उस प्रकार के गुणों से बंध जाता है। तो इन गुणों से बंध करके हम ये जो शरीर बदल रहे हैं 84 लाख, वो किस प्रकार से बदल रहे हैं, इच्छा और कर्म के अनुसार बदल रहे हैं। ये थोड़ा सा गुण विषय है, थोड़ा फिलॉसफी है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए समझना, यदि हम इस भौतिक जगत के बंधन से निकलना चाहते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। तो आत्मा उत्तरोत्तर निम्न स्तर की योनि से उच्च स्तर की योनि में जाता है। पौधे, जानवर इस प्रकार से निम्न स्तर की योनि से अपने आप उच्चतर योनि की तरफ चलता है, जब तक कि वो मनुष्य योनि को प्राप्त नहीं करता। यानी कि मनुष्य योनि से नीचे जानवरों में कर्म का सिद्धांत नहीं होता। जानवर अपने कर्म के जिम्मेदार नहीं होते हैं, उन्हें कर्म के अनुसार कार्य नहीं होता है, क्योंकि वो प्रकृति के नियमों से इतने बंधे हैं कि उनके अंदर स्वतंत्रता से कुछ भी कार्य करने की क्षमता नहीं है। इसलिए उनका स्वाभाविक प्रगति होती है निम्न स्तर की योनि से उच्च स्तर की योनि में। लेकिन इस प्रकार से जब वो मनुष्य योनि को प्राप्त करते हैं, मनुष्य योनि के अंदर चेतना इतनी विकसित होती है कि वहां पर व्यक्ति अपनी जो छोटी स्वतंत्रता है उसके द्वारा उसका वो उपयोग दोबारा से कर सकता है। यानी प्रकृति के नियमों से जो बंधा तो है, तीनों गुणों से आच्छादित तो उसके ऊपर वो है, पर फिर भी थोड़ी स्वतंत्रता उसको है, इसीलिए अभी कर्म का सिद्धांत शुरू हो जाता है। यानी कि मनुष्य में जो वो कर्म करता है उसका वो जिम्मेदार बनता है। मनुष्य से नीचे जानवर, कोई जानवर किसी को मार दे उसको कोई सजा नहीं होती है, जानवर जानवर है हम जानते हैं, पर मनुष्य के लिए नियम होते हैं कि ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, वहां पर कर्म शुरू होता है, कर्म अकर्म विकर्म, क्योंकि वहां वो जिम्मेदार हो जाता है, क्योंकि अभी उसकी चेतना इतनी विकसित है कि वो अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति के अनुसार गलत या अच्छा काम चुन सकता है। तो मनुष्य योनि इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी 84 राज योनियों में सबसे दुर्लभ योनि मनुष्य योनि बताई गई है, क्योंकि मनुष्य योनि आने पर ही अभी आपके हाथ में है, हमारे हाथ में है कि अगली योनि हमें कहां कौन सी मिलेगी। अभी वो डिपेंड करता है, निर्भर करता है मनुष्य के इस जीवन में हम कैसी इच्छाएं कर रहे हैं और कैसा कर्म कर रहे हैं, उसके आधार पर हमको अगला शरीर मिलेगा। इसलिए अभी ये बहुत महत्वपूर्ण समय हम सभी के लिए है। जानवरों की योनि में उनके हाथ में नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते अपने आप, पर मनुष्य योनि आने पर अभी इस जीवन में पूरा जीवन हम जिस प्रकार से इच्छाएं बनाएंगे और जिस प्रकार के कर्म करेंगे उसके आधार पर हमको अगला शरीर मिलने वाला है। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोगों की इच्छा होती है पानी में तैरने की, उनको बहुत तैरना अच्छा लगता है, घंटों घंटों तक तैरते रहते हैं, मछली की तरह तैरना उनको बहुत आनंद आता है, स्काई डाइविंग करते हैं नाव में, बहुत उनको आनंद आता है। तो जिनको अधिक तैरने की इच्छा होती है उनको परमात्मा प्रकृति के द्वारा अगले जीवन में ऐसा शरीर प्रदान करते हैं जिसमें तैरने की बहुत सुगमता है। तो कौन सा शरीर है? मछलियों का शरीर है। खूब तैरो, जितना तैरना है सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। किन लोगों को उड़ने की बहुत इच्छा होती है, ऊपर से जंप करते हैं एरोप्लेन से, आपने देखा होगा, और फिर अलग अलग प्रकार के खेल खेलते हैं, तैर तैर के हवा में तैर के खेल खेलते हैं, उनको बहुत आनंद आता है उसमें, एरोप्लेन में चलने में, ग्लाइडिंग ग्लाइड करते हैं उस वक्त। तो उनको अगला जीवन में ऐसा शरीर दिया जाएगा जहां उनको खूब हवा में तैरने को मिलेगा, यानी कि पक्षियों का शरीर, खूब तैरो जितना मन से करना है, अपनी सब इच्छाओं को पूरा करो। जिन लोगों को सोने की बहुत अधिक इच्छा होती है कि हम सोते रहें, तो हो सकता है उन्हें पोलर बियर, एक अंटार्कटिका में एक प्रकार का एक भालू है जो 6 महीने सोता है। तो प्रकृति के द्वारा सब प्रकार के शरीर हैं, आपकी इच्छा जैसी है परमात्मा हृदय में बैठे हैं और वो प्रकृति के द्वारा ऐसा शरीर आपको दे सकते हैं जैसी आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएं। तो इस प्रकार से इस मनुष्य जीवन में हम जिस प्रकार की इच्छाओं को कर रहे हैं वो सब हमारे मन में संचित होती रहती हैं। जो मन, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, उस सब में वो इच्छाएं संचित होती रहती हैं, उसके आधार पर हमको अगला शरीर प्रदान किया जाता है। तो एक तो है इच्छाएं और दूसरा है हमारे कर्म। तो अभी कर्म क्या है? स्वतंत्र इच्छा शक्ति के दायरे में तीनों गुणों से प्रभावित होकर हम यानी जीव जो क्रियाएं करते हैं उसे कर्म कहते हैं। दोबारा से इसको देखें, हम यानी जो जीव हैं तीनों गुणों से प्रभावित होकर अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति के दायरे में रहते हुए जो क्रियाएं करते हैं उन्हें कर्म कहते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं इस प्रकार से हर कर्म का एक प्रतिफल बनता है, रिएक्शन बनता है। यानी कि जैसे आप एक बीज बोते हैं, एक पेड़ बनता है और उससे का एक फल बनता है, उसी प्रकार से हम जो भी कर्म करते हैं उसका एक प्रतिफल बनता है जिसको हमको भुगतना पड़ता है। तो इसके आधार पर तीन प्रकार के कर्म होते हैं, एक पुण्य कर्म, एक पाप कर्म और एक अकर्म। तीन प्रकार की क्रियाएं जीव कर सकता है, एक विकर्म यानी पाप कर्म, एक पुण्य कर्म और एक अकर्म। वो क्रियाएं जो हम शास्त्र अनुमोदित, शास्त्र के द्वारा बताई गई, अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो शास्त्र के द्वारा अनुमोदित है, शास्त्र में बताई गई है, उसके अनुसार जो हम क्रियाएं करते हैं उन्हें पुण्य कर्म कहते हैं, गुड, अच्छी क्रियाएं। तो उसका फल कैसा होगा? अच्छा फल होगा। अच्छा फल यानी कि अगले जीवन में हमको अधिक भौतिक सुख प्राप्त होगा, ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिसमें हम अधिक भौतिक सुख भोग सकें, अच्छी बुद्धि, अच्छा सौंदर्य, अच्छी शक्ति, पैसा, ये सब कारण बनते हैं भौतिक सुख के। तो जो मनुष्य इस जीवन में पुण्य कर्म करता है, शास्त्र के अनुसार कार्य करता है, उसे अगले जीवन में अच्छी भौतिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं। और बहुत अधिक अच्छा पुण्य कर्म यदि करे तो बहुत से बहुत वो स्वर्गलोक तक जा सकता है, जहां बहुत अधिक भौतिक सुख उपलब्ध हैं, अमेरिका से भी कहीं ज्यादा भौतिक सुख उपलब्ध हैं स्वर्गलोक में। इसके विपरीत यदि हम विकर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, शास्त्र के विरुद्ध कार्य करते हैं, तो अधोगति होती है, मनुष्य योनि नहीं प्राप्त होती बल्कि नीचे की योनियां प्राप्त होती हैं, जानवरों की योनियां प्राप्त होती हैं और नीचे के लोकों में जाना पड़ता है, पाताल लोक तक, और जिसमें हम अनेक अनेक कष्ट सहते हैं। तो इस प्रकार से मनुष्य योनि प्राप्त होने पर हम जिस प्रकार की इच्छाएं कर रहे हैं और जिस प्रकार के कर्म कर रहे हैं उसके अनुसार हमारा अगला जन्म निश्चित है। यदि मनुष्य जीवन मिलने पर हम जानवर की तरह जीवन जी रहे हैं तो हमें अगला जन्म जानवर का, अगला शरीर जानवर का मिलेगा। तो इसको बताया गया है, इस जीवन में रहते रहते मनुष्य जीवन में सत्व स्थिति, जो सत्वगुण में, जो सत्वगुण को बढ़ाता है, ऊर्ध्वगच्छन्ति सत्वस्थः, वो ऊंचे लोकों में जाता है, ऊंचे स्थान को प्राप्त होता है। अधोगच्छन्ति तामसः, और जो तामसी गुण को बढ़ाता है वो नीचे की तरफ जाता है, निम्न योनियों में जाता है, नीचे के लोकों में जाता है। और मध्य तिष्ठन्ति राजसः, जो रजोगुण में रहता है वो इसी लोक में रहता है। तो इस प्रकार से हम भ्रमण कर रहे हैं, अयि ब्रह्मांडे भ्रमित कोई न भाग्यवान जीव, कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं, कभी बीच में रहते हैं। लेकिन चाहे हम स्वर्ग लोक में चले जाएं, चाहे पाताल लोक में चले जाएं, चाहे यहीं इसी पृथ्वी लोक पर किसी भी योनि में रहें, जीव कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता है। 84 लाख योनियों में से ऐसी कोई भी योनि नहीं है, इस भौतिक जगत में ऐसे कोई स्थान नहीं है जो हम जीव को संतुष्ट कर सके, क्योंकि वास्तव में जीव आध्यात्मिक है, चेतन है। चाहे वो स्वर्ग लोक हो, चाहे पाताल लोक हो, चाहे वो ब्रह्मा की योनि में हो कि चींटी की योनि में हो, वो जिस भी चीज का भोग करना चाह रहा है या भोग कर रहा है वो सब जड़ है। तो भला कैसे चेतन चीज को जड़ चीज के भोग करने से वास्तविक आनंद मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। इसीलिए असंतुष्टि रहती है हमेशा, और ऐसे ही भ्रमण हम करते रहते हैं, कभी संतुष्टि नहीं मिलती है। ये एक प्रकार की बड़ी विषम स्थिति में हम आके फंस गए हैं। हम जीव, हमारा वास्तविक स्थान तो भगवत धाम, भगवान की सेवा करने में है, पर अपनी गलत इच्छा की वजह से हम इस भौतिक जगत में आकर के जड़ चीजों से आनंद ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, जो कभी मिलता नहीं है, जो केवल भ्रम होता है, केवल आनंद का भ्रम होता है। इसलिए इस भौतिक जगत की शक्ति को माया कहा गया है, मा आया, जो वास्तव में नहीं है, केवल भ्रम हमको लगता है हम सुखी हो रहे हैं। जैसे मृग तृष्णा, एक हिरण रेगिस्तान में, उसको दूर से लगता है कि पानी है और प्यासा होता है और भागता है पानी के पीछे, लेकिन जब वहां पहुंचता है तो पाता है कि वहां पानी नहीं है, लगता है पानी अभी और आगे है, फिर और भागता है, वहां पहुंचता है वहां भी पानी नहीं है और भागता है, ऐसे भागता रहता है भागता रहता है और अंत में मर जाता है। तो आनंद की तलाश में हम सभी हैं, इसलिए सब कार्य कर रहे हैं, ये जीव का स्वाभाविक गुण है, क्योंकि भगवान का ये गुण है और हम भगवान के अंश हैं, इसलिए हमारे अंदर सबके अंदर इच्छा है कि हम सुखी रहना चाहते हैं, ये गलत नहीं है इच्छा, ये हमारी स्वाभाविक गुण है। पर वो हिरण की तरह हम, जैसे हिरण रेगिस्तान में पानी ढूंढ रहा है, पानी तो है पर रेगिस्तान में नहीं है, तालाब में है, वो गलत रेगिस्तान में ढूंढ रहा है, ये उसी गलती है। उसी प्रकार से जीव का सुख, जीव का आनंद तो वास्तव में भगवत भक्ति में है, भगवान श्री कृष्ण की अनन्य सेवा में है, पर अभी वो उसको ढूंढ रहा है जड़ चीजों में, इस जड़ संसार में आनंद ढूंढ रहा है, यही हमारी सबकी गलती है, इसलिए कभी संतुष्टि नहीं है। करोड़पति बनने पर भी संतुष्टि नहीं है, बड़े से बड़ा आदमी बनने पर भी संतुष्टि नहीं है, क्षणिक है, थोड़े समय रहती है फिर खत्म हो जाती है, एक भ्रम की तरह से है, सपने की तरह से है, क्योंकि वास्तविकता नहीं है। इसीलिए इस प्रकार 84 लाख योनियों भ्रमण करने पर भी हम हमेशा संतुष्ट रहते हैं। जैसे ये शरीर के अलग अलग अंग हैं, हाथ पैर, अगर हाथ और पैर को पोषण चाहिए तो उसको खाना कहां देना होगा, हाथ को खाना कहां डालना होगा, पेट में डालना होगा। अगर पेट में खाना डालेंगे, आंख कान सब आपस में तालमेल करके खाने को पेट में डालेंगे, तो सब अंगों को पर्याप्त मात्रा में पोषण मिलेगा, जितना हाथ को चाहिए, जितना पैर को चाहिए, जितना कान को चाहिए, सबको मिलेगा। लेकिन यदि मान लीजिए ये हाथ पैर नाक कान एक दिन मीटिंग बुलाएं, क्या मीटिंग है, हाथ कहता है कि मैं पूरा दिन ये काम करता हूं, पैर बोलता है मैं पूरा दिन ये सब काम करता हूं, आंख बोलती है मैं ये काम करता हूं, कान बोलता है मैं इतना काम करता हूं, अरे ये काम हम करते हैं और ये पेट ये क्या काम करता है, केवल खाता है, कुछ काम नहीं करता है। और वो ऐसा सोच ले कि आज से हम इस पेट को खाना देना बंद कर देते हैं, काम तो हम करते हैं, खाता है पेट, हम आज से खुद खाएंगे, अगले दिन से खुद हाथ और पैर को खाना देना शुरू कर दिए हम, रोटी सब्जी सब कान में नाक में घुसाने लगे पेट की जगह, थोड़े दिन बाद क्या होगा, सब कमजोर हो जाएंगे, फिर दोबारा से मिले, क्या हुआ भाई, कमजोर हो गए, पोषण नहीं मिला। उसी प्रकार से हम सब वास्तव में भगवान के अंश हैं, इसलिए जब हम आपस में मिलजुल करके भगवान की सेवा करते हैं तो वास्तव में हम संतुष्ट होते हैं। लेकिन इस भौतिक जगत में हम क्या प्रयास कर रहे हैं, खुद अपने आप भोग करने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान को भूल करके, भगवान की सेवा ना करके स्वयं भोक्ता बनने का, स्वयं भोग करने का प्रयास कर रहे हैं, यही हमारी भूल है। इसलिए हम किसी को नित्य आनंद नहीं है, अंततः टेम्परेरी है सब, क्षणिक आनंद प्राप्त होता है और दुख अनेक अनेक। तो इस प्रकार से गलत अज्ञानता में फंसकर जीव भ्रमण कर रहा है 84 लाख योनियों में, जब तक इस आर्टिफिशियल नकली इन शरीरों के दायरे से निकलकर अपने स्वाभाविक स्थान, अपने गंतव्य, अपने घर भगवत धाम नहीं पहुंचेगा, तब तक जीव को सुख प्राप्त नहीं हो सकता। आत्मा के लिए भौतिक जगत जेल की तरह से है, हम सभी कैदी हैं, हमने गुनाह किया है कि हम भगवान की सेवा नहीं करना चाहते थे और यहां हम कैदी हैं। और कैसी कैद है, जहां भगवान ने हमको पर्याप्त मात्रा में सभी प्रकार की फैसिलिटी दी है कि आपको जैसी इच्छा है वैसी इच्छा करने, भोग करने की इच्छा को पूरा करने का भगवान ने प्रबंध किया है, करके देख लो, जो भी आपकी इच्छा है सब तैयार है भगवान परमात्मा के रूप में। आपको खूब मांस खाना है, ये लो शेर का शरीर। हर प्रकार की इच्छा को पूरा करने के लिए 84 लाख प्रकार के अलग अलग शरीर भगवान ने दिए हैं। और इस प्रकार से हम अलग अलग इच्छाएं करने का प्रयास करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, अनंत जन्मों से करते आ रहे हैं, करोड़ों 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 सालों से करते आ रहे हैं। और ऐसा करने के बाद, अनेक अनेक बार जाने के बाद, अभी ये दुर्लभ मनुष्य जीवन हमको प्राप्त हुआ है। जब मौका है कि अभी आप डिसाइड, आप निश्चय कर सकते हैं अभी कि वापिस इसी चक्र में फंसे रहना है, 84 लाख योनियों के चक्र में फंसे रहना है, या अभी इस चक्र को छोड़ करके वापिस भगवत धाम जाना है। अभी ये आपको सोचना है। अगर भौतिक जगत में ही ये भोग करने की इच्छा करते रहेंगे तो कोई ना कोई भौतिक शरीर प्राप्त करना पड़ेगा, इसी भौतिक जगत में रहना पड़ेगा। तो इसलिए समझना चाहिए कि भौतिक जगत में भोग करने की इच्छा तो हमारे लिए जंजीर की तरह से है, क्योंकि जब तक भौतिक जगत में भोग करने की इच्छा रहेगी भौतिक जगत में ही रहेंगे। मान लीजिए भगवान ना करे हमें कैद में जाना पड़े, जेल में जाना पड़े, तो जेल में 3 प्रकार की कैद अलग अलग होती हैं। एक VIP जेल होती है, फर्स्ट क्लास जेल होती है, एक सेकंड क्लास जेल होती है, और एक तीसरे दर्जे की जेल होती है। अव्वल दर्जे की जेल जिसमें सब VIP लोग रहते हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर लोग रहते हैं, अगर हमको जाना पड़ जाता है वहां पर AC होता है, सब सुविधाएं होती हैं। तो यदि हम आपसे पूछें कि आप कौन सी कैद में रहना चाहेंगे, VIP जेल में, सेकंड क्लास में, कि थर्ड क्लास में, तो आप क्या उत्तर देंगे? VIP जेल में रहना चाहेंगे। कितने लोग आप में से VIP जेल में रहना चाहेंगे, कृपया हाथ उठाएंगे। VIP जेल में कितने लोग रहना चाहेंगे? दूसरे दर्जे के जेल में कितने लोग रहना चाहेंगे? तीसरे के दर्जे में कितने लोग रहना चाहेंगे? तो आपने किसी ने हाथ, केवल कुछ लोगों ने VIP में उठाया, तो बाकी लोग जेल में नहीं रहना चाहेंगे, यही बुद्धि मानता है। तो यदि आपको कहा जाए कि आप कौन सी जेल में रहना चाहेंगे, हम जेल में नहीं रहना चाहेंगे, हम क्यों VIP जेल में रहना चाहेंगे, हम स्वतंत्र रहना चाहेंगे। भले वो VIP जेल हो, पर है तो वो जेल ही है, तो वो कैद ही। तो इस भौतिक जगत में जो हम भौतिक सुखों की कामना कर रहे हैं, मंदिरों में जाकर के मांग रहे हैं भगवान से, भगवान ये सुख दो, ये सुख दो, तो हम क्या कह रहे हैं? भगवान VIP जेल में डाल दो, ये मांग रहे हैं। भगवान अमेरिका भेज दो, यहां से अच्छी जेल है, या और अधिक अच्छा तो स्वर्गलोक में भेज दो, वो और अच्छी जेल है। पर है तो जेल ही, वहां भी तो भौतिक शरीर मिलेगा, ब्रह्मा जी का भी तो भौतिक शरीर है, वहां पर भी तो जन्म मृत्यु होगा। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक सब जगह है। आ ब्रह्म भुवनान लोक का पुनरावर्तिनो अर्जुना, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं आ ब्रह्म, ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक सभी जगह पुनरावृत्ति, जन्म मृत्यु का चक्र फंसे हुए है। यम पीछे है सबके, चाहे ब्रह्मा की योनि हो चाहे कोई भी हो। तो हमें समझना चाहिए कि जीव का वास्तविक हित, परम हित VIP जेल में जाना नहीं है। ये सब भौतिक सुख वास्तव में हमारे लिए जंजीर हैं। अगर कोई कैदी कहे कि ये लोहे की जंजीर में नहीं, मुझे सोने की जंजीर में बांधो, तो वो क्या ज्यादा अच्छी स्थिति है सोने की जंजीर में बंधना? जंजीर तो जंजीर है, चाहे वो सोने की हो चाहे वो लोहे की हो। तो जब हम भगवान से मांग रहे हैं या हम प्रार्थना कर रहे हैं भौतिक सुखों की, तो हम क्या चाह रहे हैं? ये लोहे की जंजीर निकाल करके सोने की जंजीर लगा दो, तो ये मूर्खता है। तो वास्तव में मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है ये जंजीरों से निकलने के लिए, इस जेल से निकलने के लिए, अपने धाम वापस जाने के लिए। ये स्वर्णिम अवसर प्राप्त है इस दुर्लभ मनुष्य जीवन में। तो वहां जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पुण्य कर्म और पाप कर्म दोनों से बाहर निकलना पड़ेगा। हम सोचते हैं पुण्य कर्म करना बड़ी अच्छी बात है, हम कोई पाप कर्म नहीं करते, हम बहुत अच्छे हैं, हमें मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, भगवान की भक्ति करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम किसी का बुरा नहीं करते हैं, हम किसी का अपराध नहीं करते हैं, इसलिए हम सही हैं, हम बस पुण्य करते हैं। नहीं, पुण्य करना ही काफी नहीं है, क्योंकि पुण्य करने से बहुत स्वर्ग लोग जा सकते हैं, पर वो भी तो जंजीर है, वो भी तो जेल है। इसलिए क्या करना पड़ेगा, ना तो पाप कर्म करना है, ना तो पुण्य कर्म करना है, अकर्म करना है। तो अब ये तीसरा आया अकर्म। अकर्म वैसा कर्म है जिसका कोई प्रतिफल नहीं बनता। पुण्य कर्म का अच्छा फल बनता है, पाप कर्म का बुरा फल बनता है। पुण्य कर्म करने से अच्छा शरीर, अच्छा स्थान प्राप्त होता है, पाप कर्म करने से बुरा स्थान प्राप्त होता है। पर इसी भौतिक जगत में रहना पड़ता है, चाहे पुण्य कीजिए पाप कीजिए। लेकिन अकर्म वो कर्म है जिसको करने से कोई भौतिक शरीर दोबारा से नहीं मिलता, बल्कि कर्म बंधन से मुक्ति प्राप्त होती है। बुद्धि युक्ता जहाति जगत उभे सुकृत दुष्कृत, भगवान श्री कृष्ण बताए हैं कि भक्ति योग के माध्यम से सुकृत दुष्कृत दोनों से ऊपर उठो, पुण्य कर्म पाप कर्म से दोनों से ऊपर उठो, अकर्म करो। तो वो क्या है अकर्म? वो कार्य जो केवल भगवान की संतुष्टि के लिए होता है उसे अकर्म कहते हैं, उसका कोई प्रतिफल नहीं होता। जो केवल भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए कार्य किया जाए वो अकर्म होता है, उसका कोई प्रतिफल नहीं होता, ना तो पाप ना तो पुण्य। जैसे अर्जुन, तो अर्जुन और दुर्योधन दो हैं, तो अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं, पहले उन्हें डर है कि मैं पापी होगा अगर मैं अपने स्वजनों को मारूंगा। लेकिन भगवद गीता सुनकर के वही अर्जुन पूरी शक्ति से युद्ध करते हैं, क्योंकि जान लेते हैं कि किस क्षेत्र में युद्ध करना है। पहले वो राज्य सुख प्राप्त करने के हेतु से युद्ध करना चाह रहे थे, और फिर राज्य सुख प्राप्त न करने के हेतु से युद्ध न करना चाह रहे थे। तो एक विकर्म करना चाह रहे थे मान लिया, और एक पाप कर्म करना चाह रहे थे, पुण्य कर्म करना चाह रहे थे, पर दोनों ही बेकार। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं मेरी इच्छा है कि युद्ध हो, इसलिए तुम युद्ध करो, ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो यह है अकर्म, भगवान की भक्ति सेवा, जो भगवान को संतुष्ट करने के लिए कार्य किया जाए उसे अकर्म कहते हैं। ऐसा करने से दोबारा से इस भौतिक जगत में कोई और शरीर प्राप्त न करके आत्मा अपना स्वाभाविक दिव्य स्वरूप प्राप्त करती है और भगवत धाम जाती है, जहां नित्य रूप से हम भगवान की सेवा करके सच्चिदानंद स्थिति में रहते हैं। यही वास्तव में मुक्ति है, यह मुक्ति का परम स्तर है। बताया गया है भागवतम में, मुक्तिर हितन्यथा रूपम स्वरूपेणा व्यवस्थिति ही। वास्तविक मुक्ति है सभी प्रकार के अन्य कृत्रिम झूठे रूपों को त्याग करके स्वरूपेणा अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। आत्मा का स्वरूप क्या है? चिन्मय शरीर, चिन्मय इंद्रियां। आत्मा का भी इंद्रियां होती हैं, मन बुद्धि सभी इंद्रियां हैं, पर दिव्य चिन्मय इंद्रियां हैं जिनके द्वारा वो भगवान के चिन्मय शरीर की, चिन्मय इंद्रियों की सेवा में रत रहता है नित्य, और नित्य आनंद में रहता है। तो वो स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करना ही वास्तव में विमुक्ति है, सबसे बड़ी प्रकार की मुक्ति है। तो यही मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, इस विमुक्ति को प्राप्त करना, जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए निकल करके वापिस अपने घर जाना, इस जेल से निकल करके वापिस अपने घर जाना। तो हम जो शरीर प्राप्त करते हैं एक शरीर छोड़ करके, अंत समय में देह के अंत होने के समय में जिस प्रकार की भावना में हम रहते हैं, मन की जो मना स्थिति पूरी बनती है उस समय, उसके आधार पर अगला शरीर प्राप्त होने वाला है। तो जो हम कर्म करते हैं और जो हम इच्छाएं करते हैं वो सब हमारे मन में संकलित होती हैं, और अंत समय में पूरा जीवन भर जो हमने किया है उस सब का संकलन होकर के जो मन की जो स्थिति रहती है उसके आधार पर हमको अगला शरीर मिलता है। यम यम वापी स्मरण भावम तजत्यंते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेया सदा तद भाव भाविताः। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं अंत समय में जो जिस जिस भावना में देह त्यागता है वो उसी उसी के अनुरूप देह प्राप्त करता है। यदि हमारी आसक्ति, जैसे जड़ भरत, भरत की, भरत महाराज की कहानी भागवतम में आप जानते होंगे, जिनके नाम पर हमारे इस पृथ्वी का नाम भारतवर्ष पड़ा है, जो सिकुड़ करके अभी छोटा सा भारत रह गया है। तो वो आत्म साक्षात्कार के लिए सभी राजपाट छोड़ करके भगवान के चिंतन में लीन हो गए। लेकिन एक हिरण से आसक्त हो गए साधना के दौरान, इतने आसक्त हो गए कि भगवान का चिंतन छोड़ दिए और हिरण का चिंतन दिन रात करने लगे और उसी चिंतन करते करते देह त्याग दिए, जिससे उनको अगला शरीर हिरण का प्राप्त हुआ। लेकिन बहुत अधिक भक्ति सेवा किए थे इसलिए हिरण के शरीर में भी उनकी चेतना रही कि मैंने ये गलती की थी, इसलिए हिरण का शरीर प्राप्त हुआ है। और हिरण का शरीर छोड़ने के बाद फिर मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, जिसमें वो जान बूझ करके जड़ बन गए, मुख किसी से बोलते नहीं चालते नहीं, क्योंकि डर था अभी कहीं दोबारा किसी से आसक्ति ना हो जाए, तो पागल की तरह जड़ की तरह रहते थे। लेकिन वास्तव में अंदर में सब ज्ञान से ओतप्रोत थे। रहुगणा से जब बात करते हैं तब उसको समझाते हैं, सब ज्ञान देते हैं और इस प्रकार से फिर भगवत धाम जाते हैं। तो भरत महाराज को हिरण से आसक्ति होने पर हिरण का रूप धारण करना पड़ा। उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में हमें जिससे भी आसक्ति होगी वैसे ही हमको शरीर प्राप्त होगा। अपने कुटुंब से, अपने घर से आसक्ति है, उसी घर में दोबारा से शरीर जन्म मिल सकता है और कर्म के अनुसार मिलेगा। अगर अच्छे कर्म किए होंगे तो मनुष्य मिलेगा और बुरे कर्म किए होंगे तो उसी घर में कॉकरोच का या चूहे का शरीर भी मिल सकता है। वही घर है, एंजॉय करो, पर चूहे की तरह से। तो इस प्रकार से मनुष्य जीवन में हम किससे अपनी आसक्ति बना रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान बताते हैं, यदि अंत समय में मेरा स्मरण करते हुए देह त्यागोगे, अंत काले च मामेपि स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम नात्यस्त्र संशयः। अंत काल में जो मेरा स्मरण करते हुए, यानी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए जो देह त्यागता है, भगवान गारंटी देते हैं कि वो निश्चित रूप से मेरे धाम आएगा। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद् धामम परमम मम, और वो मेरा धाम परम धाम, जहां जाने के बाद पुनः इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ेगा। तो इसलिए मृत्यु एक परीक्षा है, डरने की चीज नहीं है मृत्यु। मृत्यु एक परीक्षा है और ये पूरा जीवन उस परीक्षा की तैयारी है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि अभी मजा करेंगे और अंत समय भगवान का नाम ले लेंगे। पूरा साल खेले और आखिरी में परीक्षा में कैसे उत्तीर्ण हो जाएंगे। वहां चीटिंग नहीं चलता है कि कॉपी चीटिंग कर लेंगे, कुछ पर्ची बना लेंगे, वहां पर्चियां नहीं चलेंगी। पूरा जीवन भर जो आसक्ति हुई है उसी के अनुसार अंत समय में चेतना रहेगी और उसी के अनुरूप अगला जीवन मिलेगा। इसलिए ये मनुष्य जीवन में बचपन से प्रारंभ हो जाना चाहिए भक्ति सेवा, भगवान के प्रति आसक्ति बनाने का कार्य भक्ति जिसे हम बोलते हैं, जिससे भगवान से आसक्ति हो जाए और फिर अंत समय भगवान का स्वाभाविक रूप से स्मरण करते हुए देह त्यागे और फिर भगवत धाम जा पाए। तो इसलिए ये पूरा विज्ञान है, मनुष्य जीवन जीने की रीत है, ये तरीका है। यदि हम पुनरावृत्ति नहीं चाहते हैं, यदि दोबारा से भौतिक देह नहीं चाहते हैं, और यदि भौतिक देह चाहते हैं तो फिर इसी भौतिक जगत का चिंतन कीजिए, इसी में आसक्त रहिए, तो भौतिक देह मिल जाएगा। पर जरूरी नहीं है मनुष्य का मिले, कभी जानवर का मिलेगा, कभी मनुष्य का मिलेगा और कोई भी शरीर मिलेगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि और अनेक 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 कष्ट मिलेंगे। ये शरीर कारण है सभी कष्टों का। कितने कष्ट मिलते हैं शरीर से, जब बूढ़े होते हैं, जब बीमार होते हैं, जब मरते हैं, कितने कष्टों का कारण है ये शरीर। लेकिन हम मायावश दुख झेलते रहते हैं और फिर भी उसको आलिंगन करते रहते हैं, हाँ थोड़े चपल सुख के लिए। तो ये माया का प्रभाव है, दुख देती है और फिर थोड़े समय के लिए छोटा सा सुख देती है और वो थोड़े से सुख के लिए हम वो सब दुख भूल जाते हैं और सोचते हैं हाँ अच्छा है, इसी जगत में रहना अच्छा है। और फिर माया खींच के मारती है तमाचा, दुख देती है, फिर हम चिल्लाते हैं ओ क्या हो गया है, भागो, ये नहीं चाहिए। फिर थोड़े समय बाद वो दुख कम हो जाता है, फिर माया कोई बात नहीं भूल जाओ, ये देखो कितना सुख है, हम हाँ अभी हम बहुत सुखी हैं, फिर दोबारा तमाचा लगाती है, फिर कष्ट आते हैं, फिर हम चिल्लाते हैं, रोते हैं और फिर थोड़े समय बाद फिर दुख कम हो जाते हैं, फिर सोचते हैं अभी हम ठीक हो गए, ऐसे ही इसी में घूमे जा रहे हैं। तो बुद्धि मानता है शास्त्रों को समझ करके, भक्तों के संग में आकर के समझिए कि ये माया हमारी दुश्मन है। माया जगत में, इस भौतिक संसार में रहना ये जहर की तरह से है, जिस जहर के ऊपर अमृत चढ़ा गया हो, ये वास्तव में जहर पीना है, भौतिक सुख की लालसा करना। इसलिए हमारा परम हित है कि जानना कि हम भगवान के नित्य सेवक हैं, इसलिए वापस भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करना, सेवक का, भगवान के नित्य दास का, पुनः भक्ति प्राप्त करना और ये जन्म मृत्यु के चक्र से निकल करके भगवत धाम जाना। ये जान लेने के बाद आज की हम यहां पर समाप्त करेंगे कक्षा, और कल हम लोग देखेंगे तो आज जिस स्थिति में हम हैं, जहां पर हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं, उस स्थिति में रहते हुए या आज के स्तर से, और जो फाइनल परीक्षा आने वाली है मृत्यु, कैसे हम तैयारी करें कि भगवत धाम जा सकें, कि भौतिक जगत में भी, अभी भौतिक जगत में तो है ही, तो यहां रहते रहते कैसे तैयारी करना है कि भगवत धाम जाने की तैयारी पूरी हो जाए, उसका मार्ग क्या है जिसे धर्म कहते हैं, तो धर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, ये विषय हम लोग कल देखेंगे। अलग अलग प्रकार के धर्म, अलग अलग प्रकार की योग पद्धतियां, क्योंकि वास्तव में योग का मतलब है अपना भगवान के साथ संपर्क जोड़ना, तो वो सब क्या है, ये इसके ऊपर हम चर्चा विस्तार से कल करेंगे। तो आज की इस सत्र में हमने देखा, सेशन में देखा कि भगवान की तीन प्रकार की शक्तियां हैं, अंतरंग बहिरंग तटस्थ। हम जो आत्मा जीव हैं वो तटस्थ शक्ति है, ये जड़ संसार बहिरंगा, और आध्यात्मिक जगत अंतरंग शक्ति का बना है। हम तटस्थ हैं, या तो अंतरंग शक्ति में रह सकते हैं या तो बहिरंग शक्ति में रह सकते हैं। स्वभाव है हमारा, क्योंकि हम परा हैं, अंतरंग में रहना, लेकिन इस समय जो हम अपरा में हैं वो अस्वाभाविक है, इसलिए परेशान हैं, भौतिक शरीर धारण करते जा रहे हैं और हर शरीर में परेशानियां भुगत रहे हैं। कर्म के सिद्धांत के अनुसार 84 लाख प्रकार के शरीर भुगतते जा रहे हैं, तीनों गुणों से प्रभावित हैं, इन तीनों गुणों से निकलना है, कर्म बंधन से निकलना है, अकर्म करते हुए इस कर्म बंधन को त्यागना है, पाप कर्म पुण्य कर्म दोनों से ऊपर उठना है, और ऊपर उठ करके जेल से बाहर निकल करके अपने घर वापस जाना है, भगवत धाम जाना है, भगवान की सेवा में दोबारा जाना है, वही हमारा वास्तविक हित है। तो यहां पर समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण। अभी आप में से किसी सज्जन का और या किसी माता जी का कोई प्रश्न है तो कृपया आप पूछ सकते हैं, यहां माइक की व्यवस्था भी है।
हेलो, मेरे कुछ प्रश्न है, उसमें से एक है, आपने बताया है कि जो चेतन है वो प्राशक्ति है, लेकिन पेड़ प्राशक्ति होते हैं या अप्राशक्ति होते हैं, क्योंकि पेड़ में ही जीव है लेकिन वो डर है।
पेड़ में जीव है वो जड़ है, पेड़ की चेतना का स्तर बहुत कम है, ये तो साइंस ने भी प्रूव किया है, जगदीश चंद्र बोस ने, उसकी चेतना का स्तर बहुत कम है, इसलिए उसको यंत्रों से नापा जा सकता है उसकी चेतना को।
ये
जो पेड़ के अंदर जो आत्मा है वो परा है, और जो पेड़ के अंदर जो भौतिक तत्व का बना है वो अपरा है।
दूसरा ये है, आपने बताया जैसे किसी को इच्छा है तैरने की इच्छा है, उसके साथ उस इच्छा का अनुसार उसका प्रजनन होगा, जैसे मछली का होगा, लेकिन जो मछलियों की क्वांटिटी है, संख्या है, उसके साथ से मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, मछलियों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन इतने लोग नहीं होंगे, मनुष्य नहीं होंगे कि जो उनकी इच्छा करें।
हाँ, आप कह रहे हैं कि मछली,
मतलब ये है कि उसने इच्छा की है तैरने की, हाँ, वो सिमर कर रहे हैं, लेकिन मछली की संख्या बहुत ज्यादा है,
हाँ,
तो ये कैसे हुआ?
देखिए, मैंने केवल एक उदाहरण दिया है, वास्तव में ये कर्म का सिद्धांत जटिल और अनेक अनेक चीजों से प्रभावित होकर के होता है, और जो संख्या की बात है तो जीव भी कितने असंख्य हैं, इसलिए हम जहां पर कंपैरिजन कर रहे हैं मनुष्यों से, एक ब्रह्मांड में इस शरीर के अंदर ही असंख्य जीव हैं, हर एक एक कोशिका के अंदर एक जीव है, कितने सारे बैक्टीरिया हैं, इसलिए हम न्यूमेरिकली उसका अलग अलग नहीं कर सकते हैं कि उतने जीव वहां हैं तो इतने जीव यहां हैं, उस प्रकार से। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन उनका उनका अपना, हाँ हाँ जी, हाँ, तो अपने क्रमिक विकास से, हाँ, लेकिन अन्य जीव अपने क्रमिक विकास से भी तो उस स्थिति को प्राप्त करेंगे। जैसे मान लीजिए शेर है, तो कई जीव हैं जो उससे निम्न स्तर की योनि से उठ करके उसी योनि में आ रहे हैं। सब मनुष्य योनि से नहीं जा रहे ना।
एक ये है, आपने भी बताया है कि कर्म करना चाहिए
जी,
अब कर्म या पाप कर्म की वजह से कर्म में करना चाहिए, केवल किसी किसी की भक्ति के लिए इच्छा के लिए करना चाहिए। लेकिन अर्जुन के टाइम में अर्जुन को खुद उन्होंने निर्देश दिया था, शिक्षा दी थी कि आपको ये काम करना है, नहीं करना। हमारे लिए गाइडेंस क्या है?
हाँ
जी, हमें तो पता चला है,
हाँ जी,
हम तो अच्छे काम कर सकते हैं, उन्हें काम कर सकते हैं, बुरा काम कर रहे हैं, यही मैं समझता हूँ कि ये अकर्म यही होगा। तो अकर्म को निर्देश देने के लिए हमें कोई नहीं है। उस टाइम में अर्जुन के टाइम में परमात्मा स्वयं उसको हम कैसे
Yes. तो इसकी चर्चा विशेष रूप से हम कल करेंगे विस्तार से कि अकर्म हम प्रैक्टिकली अभी कैसे कर सकते हैं। पर भगवान का आदेश इस समय हम प्राप्त करते हैं शास्त्रों के माध्यम से और भगवान के भक्तों के द्वारा, उसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि भगवान का आदेश क्या है। कंफ्यूजन क्या है कि भौतिक सुख पतंग का कारण है।
बहुत
हाँ, लेकिन आपको अच्छे कर्म करने से शांति मिलेगी, उच्च स्तर के जीवन में अधिक शांति है। पर क्योंकि जब तक भौतिक शरीर रहेगा तब तक नश्वर देह रहेगा, और नश्वर देह एक लेकिन केवल शांति प्राप्त करना ही तो अल्टीमेट लक्ष्य नहीं हुआ।
माफी चाहूंगा मैं इसमें डिस्टर्ब करने का कि कुछ और व्यक्ति भी हैं जिनको क्वेश्चन पूछना है। आप साधन आमंत्रित हैं, आप 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा घर में अवेलेबल है यहाँ, और अच्छा है, आप घर में आकर बातचीत करें तो और अच्छा रहेगा। तो इसलिए भगवान
क्या है
कुटिलता यानी एक व्यक्ति अकर्म कर्म कर रहा है और कुटिल व्यक्ति अपनी कुटिलता कर रहा है और वहां उसकी हानि होती है, तो वो उससे कैसे बचे?
ये जो विषय है कर्म अकर्म का, कल हम इसके विषय में विस्तार से लेने वाले हैं। अभी तो हमने केवल उसको इंट्रोड्यूस किया है, कल हम लोग उसका विस्तार से देखेंगे कि धर्म के विषय में पूरा विवरण, तो कल वो क्लियर हो जाएगा।
एक और
जिस फल पे हम डले थे उसके अनुसार हमारी जो दशा है बनी हुई और उसी के अनुरूप हम कार्य कर रहे थे। लेकिन जो वर्तमान में जो जितना भी विसंगति आ रही है, चाहे वो सांस्कृतिक है या राजनीतिक है या आर्थिक है या अन्य अन्य विसंगतियाँ जो आ रही हैं, तो उनके रहते हुए जो हमारा मन जो विचलित होता है तो उसको कैसे संग्रह किया जाए, इस पर कोई भी धर्माचार्य नहीं बोल रहे हैं। जहाँ तक हम देख रहे हैं कि केवल एक स्वामी रामदेव जी को थोड़ा सा उस पर कहते हैं, उसको इंगित करते हैं, लेकिन और कोई धर्माचार्य उसको विचलित नहीं करते।
इस पर भगवान श्री कृष्ण और शास्त्र खूब खूब बोल रहे हैं, कौन नहीं बोल रहा है, बहुत बहुत बोल रहे हैं और हम बोलेंगे, आप कल और परसों आइए।
तो इसलिए मेरा प्रश्न था कि किस प्रकार से हम इससे आगे बढ़ेंगे।
कल उस सबका उत्तर। हरे कृष्ण। और किसी भाई का प्रश्न है, सज्जन का, माता का? प्रथम जीव, सेवा कैसे शुरू करें, ये विषय भी कल आएगा। अभी तो हम केवल कल के जो दो विषय हैं वो क्या हैं, कल हम लोग प्रारंभ करेंगे कि अभी वापस जाने का रास्ता कैसे शुरू करें। तो अभी तो हमने केवल उसका आज इंट्रोडक्शन दिया है, कल से प्रारंभ होगा कि अभी जहां जिस स्थिति में है वहां से रह करके अभी वापस जाने का रास्ता कैसे शुरू करें, जहां से भी हैं, तो कल सब कवर हो जाए। तो उसको जिसमें हम कह सकते हैं कि वापस जाने का मार्ग का सबसे पहला चरण है अपना शुद्धिकरण। जो भौतिक भोग करने की जो इच्छा है पहले उससे निकलना होगा, क्योंकि वही कारण है हमारे बंधन का। और उन इच्छाओं से निकलने का, भौतिक कलमश से निकलने का कलयुग में शास्त्र के द्वारा जो प्रमाणित तरीका है वो हरे कृष्ण महामंत्र है, भगवान के दिव्य नामों का श्रवण और कीर्तन है। तो प्रारंभ इससे कीजिए और आगे चल के फिर आगे और अपने कर्मों के फलों को भगवान को समर्पित कीजिए। इसमें आगे फिर डिटेल्स हैं, पर प्रारंभ है कि भगवान के पवित्र नामों का श्रवण और कीर्तन। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण।